आज है 4 अगस्त दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखलंदाजी की जांच अब एक ग्रैंड जूरी के हवाले। बिहार में मुस्लिम आबादी वाले एक गांव का नाम बदलने की कोशिश।
हम लोग जो भी आक्रमणकारी इस्लामिक जिहादी लोग थे उनके द्वारा जो भी अशुद्धिकरण किया गया था हमारे नामों का, हम उसको शुद्धिकरण में लगे हैं।
और विवेचना में आपको बताएंगे किस तरह चाय को भारत में लोकप्रिय बनाने में रेलों ने अहम भूमिका निभाई।
अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को चाय पिलाना सिखाया। बहुत बड़े स्केल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया इंडियन रेलवेज में कि चाय को हम इंडियन रेलवेज में बेचें। अंग्रेज एक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ड्रिंक में।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर मौजूदा अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। घोषणा की गई है कि आरोपों की जांच कर रहे मुख्य जांचकर्ता रॉबर्ट मुलर ने ग्रैंड जूरी का गठन किया है जो मामले में आपराधिक आरोप तय करने की दिशा में पहला कदम है। इस जूरी में 60 ऐसे सदस्य होंगे जिनका राजनीतिक दलों से कोई नाता नहीं है और जो ट्रंप के परिवार के सदस्यों और रूसी अधिकारियों के संबंधों के बारे में मौजूद सबूतों को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कांगो गणतंत्र के तनावग्रस्त कसाई इलाके में हुए नस्लीय नरसंहार में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं जिनमें 50 से अधिक बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बताया गया है कि स्थानीय सुरक्षा बलों और सरकार समर्थित विद्रोही गुट बानामुरा ने 4 महीने पहले इस इलाके में विद्रोहियों को खत्म करने की मुहिम चलाई थी और इसके लिए वो ही जिम्मेदार हैं। केंद्रीय और पश्चिमी अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारी स्कॉट कैंपबेल ने बताया। हमारी टीम ने शरणार्थी शिविरों में, अस्पतालों में उन लोगों से बात की जिन्हें चोटें आई हैं। कईयों की कहानियां बेहद दर्दनाक थी। बच्चों के हाथ पैर काट दिए गए हैं, लोगों पर लाठियों से हमले हुए हैं। सिंह के पास एक गांव पर हमला हुआ था जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 90 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। ये थे केंद्रीय और पश्चिमी अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारी स्कॉट कैंपबेल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुबई की गगनचुंबी 69 मंजिला टॉर्च टावर में आज भीषण आग लग गई है। पिछले 2 सालों में आग लगने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले साल 2015 में भी इस टावर में आग लगने से नुकसान हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ताओं ने समय रहते इमारत को खाली करा लिया और आग पर काबू पा लिया गया है। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने 22 करोड़ 20 लाख यूरो यानी करीब 1680 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस पर ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार को अपने साथ जोड़ा है। इसके साथ ही नेमार दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। नेमार अब तक स्पेन के बार्सिलोना क्लब के साथ जुड़े थे। गुरुवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नेमार ने कहा, जो हो रहा है मैं उससे खुश हूँ। मैं इस नई चुनौती से खुश हूँ। पेरिस और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब से जुड़कर मुझे अच्छा लगा। ये एक शानदार शहर है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अभी कैसा अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी नई टीम के साथ काम करने और प्रैक्टिस करने को लेकर उत्साहित हूँ। मैं अपने सामने मौजूद लक्ष्यों को पाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये थे फुटबॉल खिलाड़ी नेमार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इथियोपिया की संसद ने देश में आपातकाल हटाने के पक्ष में वोट दिया है। बीते साल देश में कई महीनों तक राजधानी एडिस अबाबा के लिए प्रस्तावित एक विकास योजना के विरोध में प्रदर्शन हुए थे जो राजनीति और मानवाधिकारों के हनन के विरोध में बदल गए थे। इन हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद अक्टूबर में देश में आपातकाल लगा दिया गया था। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि हेलमंड प्रांत के गेरेश्क जिले में तालिबान लड़ाकों और सुरक्षा बलों के बीच तेज लड़ाई शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अफगान सेना के एक ठिकाने के पास मुद्रा बदलने वाली एक इमारत पर 4 लड़ाकों ने हमला किया था। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। सोमालिया में कथित चरमपंथी समूह अल शबाब ने राजधानी मोगादिशु और बाइडो शहर के बीच स्थित लीगू शहर पर कब्जा कर लिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। अमेरिका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में रूस की कथित दखलंदाजी का मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इस मामले में ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका ने अब एक ग्रैंड ज्यूरी बनाई है जो राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित भूमिका की पड़ताल करेगी। ग्रैंड ज्यूरी इस मामले में किसी भी गवाह को गवाही देने के लिए बुला सकती है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
खबरों के मुताबिक ग्रैंड ज्यूरी का गठन और कुछ आरोपियों को सम्मन जारी होना यह दर्शाता है कि ट्रंप चुनावी टीम के रूस के साथ कथित साठगांठ के मामले में जांचकर्ताओं को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं। मुख्य जांचकर्ता स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर ने ग्रैंड ज्यूरी का गठन किया है। आमतौर पर ग्रैंड ज्यूरी में करीब 26 सदस्य होते हैं जो आम शहरी होते हैं, और इसका मकसद ये तय करना होता है कि क्या किसी के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो गए हैं कि उस पर आरोप तय किए जा सकें। इसके लिए ग्रैंड ज्यूरी को जांच के अधिकार होते हैं और उसके तहत शक के दायरे में आने वाले लोगों को ज्यूरी के समक्ष पेशी के लिए तलब किया जा सकता है। ग्रैंड ज्यूरी ये तय नहीं करती कि आरोपी कसूरवार है या नहीं। ये ग्रैंड ज्यूरी गोपनीय रहती है और इसका कोई मीडिया कवरेज भी नहीं होता। रॉबर्ट मुलर राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एक रूसी नागरिक के साथ बैठक की भी जांच कर रहे हैं। पिछले साल अमरीकी जांच संस्था FBI ने अमरीकी चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के मामले में जांच शुरू की थी। व्हाइट हाउस का कहना है कि रॉबर्ट मुलर की जांच सिर्फ अमरीकी चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप तक सीमित रहनी चाहिए। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सैरा सैंडर्स कहती हैं,
द प्रेसिडेंट्स पॉइंट इज दैट ही डजंट वांट द स्पेशल काउंसिल टू मूव बियॉन्ड द स्कोप एंड आउटसाइड ऑफ इट्स मिशन।
राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि स्पेशल काउंसिल सिर्फ उसी दायरे में रहकर काम करे जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके रूस के साथ कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं रहे। ऐसी खबरें हैं कि रूसी एजेंटों के साथ कथित तौर पर संभावित गतिविधियों के सुराग ढूंढने के अलावा ट्रंप और उनकी कंपनियों के वित्तीय मामलों की गहन जांच से भी स्पेशल काउंसिल को कुछ पक्के सुराग हाथ लग सकते हैं, और माना जा रहा है कि इसीलिए रॉबर्ट मुलर ने अपनी टीम में वकीलों, FBI एजेंटों के अलावा वित्तीय मामलों की जाँच करने वाले कुछ माहिर भी शामिल किए हैं। ट्रंप की चुनावी टीम के जिन अहम लोगों की गहन जांच की जा रही है उनमें राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक फ्लिन, ट्रंप कैंपेन के मैनेजर रहे पॉल मैनाफोर्ट, ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इंकार करते रहे हैं कि उनकी चुनावी मुहिम की रूस के साथ कोई साठगांठ थी। गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने वेस्ट वर्जीनिया में एक रैली के दौरान रूस से कथित साठगांठ के बारे में जारी जांच को अपने खिलाफ साजिश करार दिया।
There were no Russians in our campaign. There never were. We didn't win because of Russia. We won because of you.
याद रहे कि 2016 के चुनाव अभियान के समय से ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच कथित साठगांठ का आरोप लगाती रही है। उस दौरान हिलरी क्लिंटन के कैंपेन मैनेजर जॉन पोडेस्टा की कुछ ईमेल्स भी लीक हो गई थी, जिससे हिलरी क्लिंटन को सियासी नुकसान उठाने की बात भी कही जाती है। और इस सब के लिए हिलरी क्लिंटन कैंपेन रूस की ट्रंप कैंपेन के साथ साठगांठ को ही जिम्मेदार ठहराता रहा है, लेकिन ट्रंप डेमोक्रेट्स के आरोप खारिज करते हैं।
The reason why Democrats only talk about the totally made up Russia story is because they have no message.
ट्रंप कह रहे थे डेमोक्रेट्स के पास न तो कोई एजेंडा है न कोई संदेश है, इसीलिए वो रूस वाली गढ़ी हुई कहानी का राग अलापते रहते हैं। कथित रूसी हस्तक्षेप के सिलसिले में अमरीकी कांग्रेस और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी अब टकराव साफ दिख रहा है। डेमोक्रेट्स के अलावा बहुत से रिपब्लिकन सांसद भी रूस को सबक सिखाने के हक में हैं। रूस को दंडित करने के मकसद से अमरीकी कांग्रेस द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर भले कर दिए हों, मगर उन्होंने कांग्रेस को इस प्रतिबंध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अमरीकी राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर बिल में भी ट्रंप को कांग्रेस से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इस ग्रैंड ज्यूरी की कार्रवाई का असर 2018 के संसदीय चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि ग्रैंड ज्यूरी के समन मिलने के बाद रूस के साथ कथित साठगांठ के सिलसिले में आरोपियों की पेशी का सिलसिला भी जल्द शुरू हो जाएगा। ग्रैंड ज्यूरी की कार्रवाई महीनों जारी रह सकती है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत में पिछले कुछ दिनों से कुछ खास तरह के नामों को बदलने या बदलने की कोशिश की चर्चाएं और खबरें सुनने में आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय करने का प्रस्ताव दिया, जिसे केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। इसी बीच बिहार में मुस्लिम आबादी बहुल एक गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव प्रशासन को सौंपा गया है, जिसकी वजह से ये गांव चर्चा में आ गया है। इसके लिए अभियान चला रही संस्था इसे शुद्धिकरण अभियान बता रही है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य।
बिहार के वैशाली जिले के एक गांव का नाम बदलने का मामला सामने आया है। हिंदू पुत्र संगठन नाम की एक संस्था वैशाली जिले के गांव शाहपुर काशिम का नाम बदलकर शिवपुर करने के लिए करीब 1.5 साल से अभियान चला रही है। इस संगठन ने इस सिलसिले में 1 अगस्त को बैठक की और फिर कल इस संबंध में दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षर वाला आवेदन प्रशासन को सौंपा। संगठन के जिला सचिव राजीव ब्रह्मर सिंह के मुताबिक यह एक शुद्धिकरण अभियान है।
पीओ साहब को जो बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि हम लोग जो भी आक्रमणकारी इस्लामिक जिहादी लोग थे उनके द्वारा जो भी अशुद्धिकरण किया गया था हमारे नामों का, हम उसको शुद्धिकरण में लगे हैं। दस्तावेज हो न हो तो दस्तावेज बनाया जाए, हम इस काम में आगे बढ़े।
लेकिन प्रशासन को सौंपे गए आवेदन में नाम बदलने की वजह दूसरी बताई गई है। आवेदन में कहा गया है कि यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है और यह गांव हिंदू देवता भगवान शिव के भक्तों का केंद्र है, इस कारण गांव का नाम बदला जाए। शाहपुर कासिम में करीब 1/3 आबादी मुस्लिमों की है। संगठन का दावा है कि गांव का नाम सभी की सहमति से बदला गया है। गांव के एक मुस्लिम युवा मोहम्मद रिजवान ने BBC से बातचीत में इसकी पुष्टि की। तीन अगस्त को संगठन की ओर से एक हवन का भी आयोजन किया गया था, साथ ही शिवपुर नाम वाले बैनर भी इस इलाके में लगाए गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार का प्रस्ताव है कि बनारस के निकट मशहूर मुगलसराय स्टेशन का नाम जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जाए। आज इस प्रस्ताव पर संसद में हंगामा भी हुआ। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
कुछ इसी तरह का एक मामला झारखंड की राजधानी रांची में सामने आया है, जहां 70 साल पुराने रांची कॉलेज का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने की वजह से स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और नारेबाजी की गई है। और अब एक जरूरी सूचना।
BBC इंडिया बोल।
सीमा पर भारत और चीन के फौजी आमने सामने, पर संसद में सुषमा स्वराज कहती हैं कि भारत की तरक्की में चीन का योगदान है। कभी गरम कभी नरम का रवैया क्यों? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 5 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
भारतीय रेल का भारतीय समाज से बहुत नज़दीकी सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। हाल ही में अरूप चटर्जी की एक किताब प्रकाशित हुई है, द परवेयर्स ऑफ डेस्टिनी, अ कल्चरल बायोग्राफी ऑफ इंडियन रेलवेज, जिसमें उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारतीय साहित्य, फिल्मों और जनमानस पर रेलवे के प्रभाव का दिलचस्प चित्रण किया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नज़र डाल रहे हैं इस पुस्तक के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक 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 रेल चली है जीवन की।
भारतीय रेल की इस कहानी की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में। उस दिन वहां सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। दोपहर 3:30 बजे 21 तोपों की सलामी के साथ ठाणे के लिए पहली बार एक ट्रेन रवाना हुई थी। उस पर सवार थे बंबई के गवर्नर फॉकलैंड की पत्नी लेडी फॉकलैंड और 400 अति विशिष्ट आमंत्रित लोग। अगर 1846 में अमेरिका में कपास की फसल बर्बाद नहीं हुई होती तो शायद रेलवे को भारत में आने में थोड़ा समय और लगता। द परवेयर्स ऑफ डेस्टिनी, अ कल्चरल बायोग्राफी ऑफ द इंडियन रेलवेज के लेखक अरूप चैटर्जी बताते हैं।
कॉटन क्रॉप फेलियर काफ़ी जगह पे हुए हैं, एक तो इंग्लैंड में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, और उस वजह से अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ के जूट और कॉटन प्लांटेशंस को एक्सप्लॉयट करके, यानी हुगली रिवर के आसपास या फिर हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के वहाँ पे, उसको मैनचेस्टर तक पहुँचाया जाए। और उस दौरान इंडियन रेलवेज काफ़ी हावी हुआ इंडियन इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि इंडिया दे रहा था 18,000 पाउंड हर मील के लिए, जबकि वही लाइन जब अगर बनती ब्रिटेन में या यूनाइटेड स्टेट्स में तो उसका खर्चा आता 2,000 पाउंड। सो इंडिया वॉज स्पेंडिंग 9 times more, 9 गुना ज़्यादा वो खर्च कर रहे थे। तो जो पैसेंजर ट्रेन से जो अंग्रेज कमाते थे वो फ्रेट ट्रेन्स में बचाते थे, और दोबारा वही एक्सपेंडिचर रेलवे एक्सपेंशन में किया जाता था। 1870 और 80 के दशक में फैमिन्स हुए साउथ इंडिया में, डेक्कन में, जिनमें रेलवेज का किरदार ये था कि फैमिन से बचाएं, दे वर सपोज टू बी द फैमिन हीलर्स, हालांकि 2 million लोगों की मौतें हो गई।
5 सालों में ही रेलवे का जादू इस कदर बोलने लगा था कि दिल्ली की गद्दी से अपदस्त आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भारतवासियों से वादा किया था कि अगर उन्हें दोबारा गद्दी मिलती है तो वो भारत में रेलवे लाइनों का जाल बिछवा देंगे।
आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जिसे कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट जो दिल्ली गजट में पब्लिश हुआ था सन 1857 में, उन्होंने वायदा किया था इंडियन मर्चेंट्स को कि अगर आप हमें राजा के तौर पे खड़ा करेंगे, जब दिल्ली को आज़ादी मिल जाएगी, हम आपको हमारे इंडियन ओन्ड रेल कार्स देंगे, हमारे लाइन बिछाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें अंग्रेजी जो बेनिफिट्स थे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स थे, उनसे नफरत नहीं थी, और अगर नफरत थी भी तो उसे बहुत अच्छे तरह से कैमोफ्लाज किया गया था और उसे अपने यूज में हमने काफी अच्छा इस्तेमाल करना सीख गया था। ये अलग बात है कि दिल्ली को आज़ादी नहीं मिली और हमें अंग्रेज रेल से ही गुजारा करना पड़ा।
भारत के लोगों के रेलवे के साथ रोमांस को न सिर्फ भारतीय साहित्य बल्कि हिंदी फिल्मों में भी पर्याप्त जगह मिली है। याद कीजिए आराधना, द बर्निंग ट्रेन, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परिणीता और दिल से।
रेलवेज को भी आप एक चरित्र जैसा ही समझ सकते हैं, और जब हम सन 1969 में आते हैं आराधना फिल्म में मेरे सपनों की रानी, तब रेलवे एक अजीब व गरीब चरित्र आजमाता है और रेलवे खुद ही एक क्वीन बन जाता है। तो हम रेल में सफ़र करते हुए शर्मिला टैगोर को जब देखते हैं और वहाँ पे राजेश खन्ना को देखते हैं, तो इन दोनों के मिलन को फैसिलिटेट जो कर रहा है जो व्हीकल, वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। लेकिन रेलवे खुद ही एक फेमिनाइजेशन से गुजरता है, यानी उनको एक स्त्री का दर्जा दिया जाता है, एक खूबसूरत एक प्रिंसेस का दर्जा दिया जाता है इस गाने में।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
और इसके बाद हम देखते हैं एक फिल्म आती है इजाजत, जहाँ पे एक छोटे से टाउन का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे दो प्रेमी काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, उनका सेपरेशन हो गया है पति और पत्नी का। तो रेलवेज बड़े शहरों से लेके छोटे शहरों तक भी पहुँच जाती है। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के लोकस में एक बहुत एपिकल फिल्म आया था शोले। शोले हमें समझाता है कि एक टाउन के जन्म लेने के पीछे जिस इंडस्ट्री का हाथ है वो है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इस टाउन में, जो जिसका नाम है रामगढ़, लाता है सभ्यता और ये लाता है जय और वीरू को। तो जय और वीरू सभ्यता के दो किरदार नहीं है, हालांकि वो सभ्यता लाने में मदद करते हैं। सभ्यता कैसे? क्योंकि इस टाउन को हमें गब्बर से बचाना है, और वो पहला सीन जहाँ पे धुआं छोड़ता हुआ वो इंजन टाउन में आ रहा है, तो वो एक गूंज, एक खामोश सी गूंज हमारे आंखों के सामने हमें दिखने लगती है, और वो गूंज हमें कानों से महसूस ना होते हुए हमें आंखों से उसका स्टीम इंजन का जो नज़ारा है वो ज़्यादा महसूस होता है।
स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है।
पाकीज़ा फिल्म का वो सीन भी याद कीजिए जब राजकुमार एक ट्रेन में चढ़ते हैं जहां मीना कुमारी सोई हुई हैं और वो उनके लिए कागज़ पर एक नोट लिखकर छोड़ जाते हैं।
आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।
हालांकि अंग्रेज ये कतई नहीं चाहते होंगे, लेकिन रेलवे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका के नगर पीटरमैरिट्सबर्ग में, जहां एक रात एक गोरे ने फर्स्ट क्लास के रेलवे के डिब्बे से महात्मा गांधी का सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। बाद में रेलवे का जितना अधिक राजनीतिक इस्तेमाल गांधी ने किया, उतना शायद किसी भारतीय राजनेता ने नहीं।
बहुत अजीब बात है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्लास छोड़ के ट्रैवल नहीं करता, और वहाँ पे सन 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन में उन्हें उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने मैट्रेस नहीं लिया था। उन्होंने चूंकि एक्स्ट्रा पे नहीं किया था, इस वजह से एक मुठभेड़ हो गई और उनको, चूंकि वो हिंदुस्तानी थे, वो गोरे नहीं थे, उनको उतार दिया गया। वो जो भूत उनके सर पे चढ़ा, वो जाके हावी हुआ 30 साल बाद अंग्रेज सरकार पे। और महात्मा गांधी एक, उनको एक ऐसी एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया था रेलवे, इंडियन रेलवेज के वजह से, कि लोग रेलवे के नीचे आ जाते थे, बोलते थे कि आप ट्रेन चला दो, हम यहीं पे सो जाएंगे, हमें दर्शन चाहिए महात्मा गांधी का। रेलवे प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने कांग्रेस नेशनलिस्ट्स के आंदोलन का एक थिएटर बना दिया, वहाँ वो एक रंगमंच बन गया जहाँ पे नेशनलिस्ट्स आते थे, कांग्रेस वाले आके खुद बोलते थे हमें अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट किया भी जाता था।
महात्मा गांधी और ट्रेन के संबंध का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रमोद कपूर ने गांधी पर लिखी जीवनी में किया है। गांधी और उनके बेटे हरिलाल गांधी में अनबन हो गई थी और वो घर छोड़कर चले गए थे। प्रमोद कपूर बताते हैं,
इनको पता लगा हरिलाल को कि कटनी जंक्शन से गांधी जी और कस्तूरबा पास कर रहे हो, तो ये बुरी कंडीशन में थे, जरूर मतलब ड्रंक थे, और उन्होंने वहाँ नारे लगाना शुरू किया, कस्तूरबा माँ की जय, कस्तूरबा माँ की जय। तो लोगों ने देखा कि ये कौन आदमी है भाई, कि ये सब लोग तो महात्मा गांधी की जय कर रहे हैं, एक को पीछे से चिल्ला रहा है। तो इन्होंने देखा अपने कंपार्टमेंट से कि हरिलाल था वहाँ पर, तो उसको बुलाया गया, वहाँ गए ये। और तब तक ट्रेन चलने लगी तो संतरा जो है उन्होंने अपनी माँ को दिया और कहा कि ये इसको खाने मत देना, इसको मत खाने देना, आप खाना, आप खाना। इट वॉज अ वेरी पॉइग्नेंट मोमेंट, यू नो।
1928 में भगत सिंह ने भी लाहौर से कलकत्ता भागने के लिए ट्रेन का सहारा लिया था। ईश्वर दयाल गौड़ अपनी किताब मार्टियर्स एज ब्राइड ग्रूम ए फोक रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं,
साउंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने 17 दिसंबर 1928 की रात लाहौर के डीएवी कॉलेज के अहाते में बिताई। अगली सुबह भगत सिंह भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी के यहाँ चले गए। उन्होंने तय किया कि वो वहां से कलकत्ता जाएंगे। भगत सिंह ने साहब का वेश धारण किया, दुर्गा देवी उनकी पत्नी बनी और राजगुरु उनके नौकर। शाम को ये ड्रामा पार्टी एक तांगे पर लाहौर स्टेशन पहुंची, जहां से उन्होंने कलकत्ता के लिए फर्स्ट क्लास के 2 टिकट खरीदे। नौकर राजगुरु और साधु के वेश में चंद्रशेखर आज़ाद तीसरे दर्जे के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। रास्ते भर आज़ाद तुलसीदास के दोहे गाते रहे। ड्रामे को वास्तविक रूप देने के लिए साहब भगत सिंह लखनऊ स्टेशन पर चाय पीने उतरे, नौकर राजगुरु दूध की तलाश में अलग से उतरे और साधु चंद्रशेखर आज़ाद ने स्टेशन के नल से पानी पिया। कलकत्ता पहुंचते ही साहब ने अपना ओवरकोट उतारकर बंगालियों की पोशाक धोती कुर्ता पहन लिया।
भारतीय रेल और चाय का रिश्ता भी बहुत पुराना है। उत्तरी भारत के रेलवे स्टेशनों में अभी भी यात्री की आंख खुलते ही पहली आवाज जो उसके कान में गूंजती है वो है चाय गरम।
अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को चाय पिलाना सिखाया और इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1880 में, जिसके बाद बहुत बड़े स्केल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया इंडियन रेलवेज में कि चाय को हम इंडियन रेलवेज में बेचें। शुरू में चूंकि वो एक सैंपलिंग करवा रहे थे और फ्री इसलिए भी पिलाई जा रही थी ताकि लोगों में वो आदत डाली जाए। अंग्रेज एक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ड्रिंक में, जो बाद में उन्हें समझ में आया कि ये हिंदुस्तानी ये पीने के लायक नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा कम दूध या थोड़ा सा कम चीनी पसंद था, जबकि हमने चाय को एक लस्सी में तब्दील कर दिया।
1947 में आजादी और विभाजन के बाद भारतीय रेल इस शताब्दी के सबसे बड़े पलायन का जरिया बना। लाखों लोगों ने रेल पर सवार होकर सीमाएं पार की और उन्हें अभूतपूर्व क्रूरता, हिंसा और बलात्कार का सामना करना पड़ा। ट्रेन में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला सकीना की त्रासदी पर सादत हसन मंटो ने कहानी लिखी, खोल दो। गिरजा कुमार ने अपनी किताब द बुक ऑन ट्रायल फंडामेंटलिज्म एंड सेंसरशिप में लिखा,
खोल दो एक मुसलमान लड़की की कहानी है जो स्टेशन पर खो गई और उसको दंगाइयों ने अमृतसर से मुगलसराय जाने वाली ट्रेन से अगवा कर लिया। बाद में 8 मुसलमान नौजवान उस लड़की को वापस उसके पिता के पास पहुंचा देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि लड़की उन्हें रेलवे लाइन के पास बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी। सकीना बहुत सुंदर है, लेकिन जब उसे उसके पिता को सौंपा जाता है तो उस वक्त उसकी हालत एक लाश की तरह होती है। जब उसको देखने आया डॉक्टर उसके पिता से कहता है कि खिड़की खोल दो, तो वो अपनी सलवार उतार देती है, मानो अपने आप पर जुल्म ढाने वालों के आदेश का पालन कर रही हो।
आज भारतीय रेल भारत सरकार का एक तरह से लघु रूप है, संख्या में ज्यादा लेकिन गुणवत्ता में कम। हर दिन भारतीय रेल पूरे देश को जोड़ती है। साल 2015-16 के दौरान रेल के 8,60,000,000,000 टिकट बेचे गए। इसका मतलब यह हुआ कि हर भारतीय ने साल भर में कम से कम 7 बार कहीं न कहीं जाने के लिए रेल का सहारा लिया। इस समय गरीब से गरीब भारतीय भी गतिमान है। वजह है भारतीय रेल से सस्ता किराया संभवतः दुनिया की किसी रेल में नहीं। रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार। इंदु पांडे खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। सिहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के पहली पारी के 622 रनों के विशाल स्कोर के सामने मेजबान श्रीलंका की शुरुआत खराब रही आज। और आज के खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 50 रनों पर ही 2 विकेट खो दिए। और दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान दिनेश चंडीमल 8 और कुशल मेंडिस 16 रन बनाकर क्रीज पर थे। वहीं भारत की शुरुआत भी बहुत खराब रही। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अपनी पारियों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। और लंदन में आज से एथलेटिक्स की सबसे बड़ी प्रतियोगिता यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो रही है। दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट इस चैंपियनशिप में आखिरी बार फर्राटा भरेंगे और इसीलिए ये चैंपियनशिप दुनिया भर में चर्चा में है। इस चैंपियनशिप में भारत के एथलेटिक्स भी भागीदार होंगे और 10 दिन की इस प्रतियोगिता में 25 भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज किसी भी भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला नहीं है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। 2011 में वर्ल्ड सॉकर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके नेमार आज अपनी ट्रांसफ़र फीस को लेकर के खबरों में हैं। ट्रांसफर फीस वो रकम होती है जो एक क्लब दूसरे क्लब को किसी खिलाड़ी को खरीदने के लिए देता है। इसके बाद इसी रकम के आधार पर खिलाड़ी की सैलरी तय की जाती है। नेमार की बात करें तो इस रिकॉर्ड डील के बाद अब पेरिस सेंट जर्मेन हर हफ्ते उनको तकरीबन 5 करोड़ रुपए सैलरी देगा। ब्राजील के फुटबॉल स्टार नेमार को क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने 22 करोड़ 20 लाख यूरो यानी कि करीब 1680 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस पर अपने साथ जोड़ा है।
खेल समाचारों के साथ ये थी इंदु पांडे। और एक नज़र बीबीसी हिंदी के पन्ने पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा है कि वो डरेंगे नहीं। ये वाकया गुजरात में बाढ़ प्रभावित बनासकांठा का है, जहां वो बाढ़ प्रभावितों से मिलने गए थे। और थोड़ी देर में भारत में बजने वाले हैं रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। लेकिन पहले सुनेंगे मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कांगो गणतंत्र के तनावग्रस्त कसाई इलाके में हुए नस्लीय नरसंहार में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 50 से अधिक बच्चे हैं। दुबई की गगनचुम्बी 69 मंजिला टॉर्च टावर में भीषण आग लग गई। पिछले 2 सालों में आग लगने की ये दूसरी बड़ी घटना है। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने 22 करोड़ 20 लाख यूरो यानी करीब 1,680 करोड़ रुपये में ब्राज़ील के फुटबॉल स्टार नेमार को अपने साथ छोड़ा है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुने आपने मानसी दास से और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। दिन भर में आज इतना ही। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।